नमस्कार, आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर बात कर रहे हैं। उद्बोधन का नाम है गायत्री साधना की उपलब्धियां। इसमें उन्होंने गायत्री मंत्र की शक्ति और उसके जो लाभ हैं उन पर रोशनी डाली है।
जी, और ये सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन में व्यवहारिक रूप से कैसे उतरता है इसकी बात है।
हाँ बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव ने अथर्ववेद का संदर्भ दिया है और बताया कि गायत्री मंत्र के 7 खास लाभ हैं।
7 लाभ? अच्छा।
हाँ, 5 तो हैं भौतिक और 2 हैं आध्यात्मिक।
5 भौतिक और 2 आध्यात्मिक, दिलचस्प है।
उन्होंने एक श्लोक भी बताया है, स्तुता मया वरदा वेद माता। इसमें 7 लाभ गिनाए गए हैं, तो एक एक करके देखें इनको।
जरूर जरूर, शुरू करते हैं। पहला लाभ क्या है?
पहला है आयु, मतलब लंबी उम्र। लेकिन गुरुदेव ये साफ करते हैं कि ये कोई जादू टोने से नहीं।
हाँ, ये कोई दवाई नहीं है।
नहीं, ये आता है संयम से। गायत्री साधना आपको संयमित जीवन जीना सिखाती है।
और उनका मानना है कि ज्यादातर बीमारियां और कम उम्र का कारण असंयम ही है।
बिल्कुल सही, मतलब साधना को सीधे सीधे जीवन शैली, आपके रोज के अनुशासन, उससे जोड़ा गया है। ये सिर्फ मंत्र जाप नहीं है।
सही कहा, ये व्यक्तित्व और सोच को सुधारने की बात है
जिससे संयम अपने आप आ जाता है।
अच्छा, तो पहला हुआ आयु संयम से।
बिल्कुल।
दूसरा लाभ है प्राण।
प्राण यानी जीवन शक्ति।
हाँ, इसे हिम्मत, जीवट या साहस भी कहा है गुरुदेव ने।
और दिलचस्प बात यह है कि गायत्री शब्द में जो गया है उसका अर्थ ही प्राण है।
अच्छा,
गए मतलब प्राण।
जी, और ये वो हिम्मत है जो अच्छे कामों के लिए चाहिए, बुरे कामों के लिए नहीं।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हिम्मत तो गलत काम के लिए भी हो सकती है।
हाँ,
पर साधना वाली हिम्मत, वो प्राण शक्ति, वो सिर्फ अच्छे रचनात्मक कामों के लिए होती है। इसी से आपकी साधना की परख होती है, आपकी संकल्प शक्ति कितनी मजबूत है।
बिल्कुल, तो अच्छे साहस से प्राण। अब तीसरा लाभ है प्रजा।
प्रजा संतान।
हाँ, पर सिर्फ संतान पैदा करना नहीं, गुरुदेव के अनुसार प्रजा का मतलब है ऐसे साथी, ऐसे अनुयायी मिलना जो आपके आदर्शों पर चलें, जैसे गांधी जी के अनुयायी थे।
मतलब क्वालिटी, संख्या नहीं।
बिल्कुल, और ये अनुयायी या संतानें भी तभी अच्छी मिलती हैं जब अभिभावक या लीडर खुद चरित्रवान हो।
सही बात है, आपके अपने गुण ही दूसरों को आकर्षित करते हैं।
फिर चौथा लाभ आता है कीर्ति।
कीर्ति मतलब प्रसिद्धि।
हाँ, लेकिन सच्ची प्रसिद्धि, वो नहीं जो पैसे से खरीदी जाए। ये आती है प्रामाणिकता से, मतलब जब आप जो कहते हैं वो करते हैं।
अच्छा, ऑथेंटिसिटी जिसे कहते हैं।
जी, जब व्यक्ति प्रामाणिक होता है तो लोग उस पर भरोसा करते हैं।
और भरोसे से सहयोग मिलता है।
हाँ, और जहाँ सहयोग है वहाँ संपन्नता अपने आप आती है। ये एक चेन है,
प्रामाणिकता, फिर विश्वास, फिर सहयोग और उससे संपन्नता। बहुत बहुत गहरा क्रम है ये। गायत्री साधना इसी प्रामाणिकता को, इसी अंदरूनी सच्चाई को विकसित करती है।
हाँ, पांचवा भौतिक लाभ है द्रव्यणम यानी धन,
पैसा।
जी,
जिसकी सबको जरूरत है।
हाँ, लेकिन यहाँ भी गुरुदेव मात्रा से ज्यादा उसके सही उपयोग पर जोर देते हैं।
अच्छा, कमाना ही काफी नहीं, सही जगह लगाना भी जरूरी है।
बिल्कुल, और कमाने के भी 3 सीधे साधे तरीके बताए हैं, कोई शॉर्टकट नहीं।
क्या है वो तरीके?
पहला, परिश्रमशीलता, आलस्य छोड़ो, मेहनत करो।
दूसरा,
निरंतर योग्यता वृद्धि, मतलब अपनी स्किल्स, अपनी काबिलियत बढ़ाते रहो,
सीखते रहना।
और तीसरा, किफायतशारी यानी मितव्ययिता, सोच समझ कर खर्च करना।
ये तो बड़े प्रैक्टिकल सूत्र हैं। आध्यात्मिकता का यही तो व्यावहारिक पक्ष है। सफलता के लिए मेहनत, सीखना और बचत, ये जरूरी हैं। ये कोई हवाई बातें नहीं है।
सही कहा। तो ये हो गए 5 भौतिक लाभ, अब आते हैं 2 आध्यात्मिक लाभों पर।
जी,
पहला है पाओ मानी द्विजानाम, ये थोड़ा गहरा है।
पाओ मानी द्विजानाम, इसका क्या अर्थ है?
ये मनुष्य के दूसरे जन्म का प्रतीक है, आध्यात्मिक जन्म। द्विज,
द्विज मतलब जिसका 2 बार जन्म हुआ हो।
हाँ, गुरुदेव कहते हैं जन्मना जायते शूद्र, मतलब जन्म से तो हर कोई बस अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए जीता है, एक तरह से पशु समान। लेकिन गायत्री साधना से, संस्कारों से व्यक्ति इंसान बनता है, वो द्विज कहलाता है, सिद्धांतवादी बनता है, आदर्शों के लिए जीता है।
अच्छा, तो ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, शारीरिक प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर आदर्शों के लिए जीना।
और ये व्यक्ति अंदर बाहर से पवित्र हो जाता है।
ये पवित्रता कैसे आती है? सिर्फ नहाने धोने से तो नहीं?
नहीं नहीं, ये ज्ञान से, अच्छे कर्मों से और सबके प्रति सद्भाव रखने से आती है, मन की पवित्रता।
समझ गई, ये है पहला आध्यात्मिक लाभ। और दूसरा?
अंतिम 7वां लाभ है ब्रह्मवर्चस्व।
ब्रह्मवर्चस्व ये क्या है, कोई दिव्य शक्ति?
इसे आप एक तरह की आत्मिक शक्ति या रूहानी ताकत कह सकती हैं, अंदरूनी चमक।
अच्छा,
ये शारीरिक ताकत या पैसे की ताकत या दिमाग की ताकत, इन सबसे बड़ी होती है। जैसे गांधी जी की ताकत थी, वो ब्रह्मवर्चस्व था।
तो ये कैसे प्राप्त होता है?
गुरुदेव बताते हैं ये दो चीजों के मेल से आता है, योग और तप।
योग और तप।
हाँ, योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं बल्कि अपने विचारों को परिष्कृत करना, उन्हें ईश्वर से जोड़ना, ऊंचा उठाना।
और तप?
तप यानी कठिनाइयां सहते हुए भी अपने सिद्धांतों पर, अपने आदर्शों पर टिके रहना, पीछे न हटना।
अच्छा, तो विचारों का परिष्कार और सिद्धांतों पर दृढ़ता।
इन
दोनों से ब्रह्म वर्चस्व पैदा होता है, यही गायत्री उपासना का सार है।
बिल्कुल, और पूज्य गुरुदेव सिर्फ बताते नहीं, वो अपने जीवन का उदाहरण भी देते हैं।
हाँ, ये महत्वपूर्ण है।
वो कहते हैं कि उन्होंने खुद सही ढंग से गायत्री उपासना करके ये सारे लाभ पाए हैं। लंबी आयु, मतलब कार्य के नतीजों के रूप में लंबी आयु, संगठन बनाने की क्षमता, प्रामाणिकता, ब्रह्म वर्चस्व, सब कुछ।
जी, उनका जीवन ही एक प्रमाण है।
तो सार ये है कि पूज्य गुरुदेव के अनुसार गायत्री साधना सिर्फ कोई मंत्र जाप या कर्मकांड नहीं है।
नहीं, ये तो जीवन जीने की एक पूरी पद्धति है।
हाँ, एक ऐसी प्रक्रिया जो जीवन में संयम लाती है, साहस देती है, प्रामाणिकता सिखाती है, परिश्रम करने की प्रेरणा देती है और आदर्शों पर चलना सिखाती है।
और इससे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उन्नति होती है।
बिल्कुल,
ये पूरी चर्चा एक गहरा सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए।
क्या सवाल?
यही के क्या हमारी बाहरी दुनिया की जो सफलता है, जो उपलब्धियां हम देखते हैं, वो वास्तव में हमारे अंदरूनी गुणों का, हमारे चरित्र के परिष्कार का ही प्रतिबिंब होती हैं? क्या बाहर जो दिखता है वो अंदर का ही आईना है?
ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या बाहरी सफलता सिर्फ आंतरिक विकास का परिणाम है?
इस पर विचार किया जा सकता है।
जरूर। तो आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।